Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dakshinamurti Stotram, presented by Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Kartam Rishi, Devahuti ne kaha ki aise jhopri mein aur अपने ही गुजारा होना कितना मुश्किल हो रहा है और बच्चे होंगे तो फिर कैसे रहेंगे और क्या है तुम्हारे पास साधन? कुछ भी नहीं है साधन. कर्दम ऋषि ने कहा कि तुम क्यों चिंता करती हो, इन सब की चिंता तुम मत करो. तो कहा वो बिंदु सरोवर में जाओ, नहा के आ जाओ. तुम जब तक नहा के आओ बाकी तैयारी हम करते हैं. देवभूति नहाने के लिए चली गई. जाते समय अकेले गई थी, वही एक फटा हुआ कपड़ा था, कोई नया कपड़े कुछ नहीं थे, अकेले थी. जैसे वह सरोवर में उन्होंने डुबकी लगाई, भागवत के प्रसंग आप लोगों ने कई बार सुना हुआ था, ये सुना रहा हूं. जैसे सरोवर में डुबकी लगाई तो वहां अनेक अप्सराएं खड़ी हो गई, दास दासियां खड़े हो गए, उनकी सेवा करने के लग रही है, जय जयकार कर रही हैं, और सब हाथ में कोई अंगराग लेकर खड़ा है, कोई वस्त्र लेकर खड़ा है, कोई आभूषण लेकर खड़ा है. देवहूति को बड़ा आश्चर्य लगा कि ये क्या हुआ है. कहीं जल के अंदर कोई प्रेत तो छुपकर नहीं बैठा है और वो मुझे इस प्रकार से अपने प्रेत शक्ति के द्वारा सम्मोहित कर तो नहीं रहा है. क्या मैं वही मनु महाराज की पुत्री हूं? क्या मैं वही कर्दम ऋषि की पत्नी हूं? यदि मैं वास्तव में कर्दम ऋषि की पत्नी हूं तो मेरे पति कहां हैं? ये मुझे कोई प्रेत, कोई भूत, कोई प्रेत मुझे छल तो नहीं रहा है. उनके मन में ये शंका हो गई तो कर्दम ऋषि वहीं खड़े हैं. ये तो चिंता न कर, किसी भूत प्रेत ने इसको तुझे छला नहीं है. लेकिन ये कहां से, ये क्या है? बोले तू चिंता, ये सब मेरी योग शक्ति है, मेरे संकल्प से ये सब तैयार हुआ है. ये कपड़ा, ये गहने, ये आभूषण, ये अंगराग, ये दास दासियां, सबके सब ये योग सिद्धि है. मैं तेरा पति यही हूं, तू बिल्कुल चिंता न कर. कोई भूत प्रेतों ने ठगा नहीं है, छला नहीं है तुम्हें. तब बाहर निकली और दिव्य आभूषणों से, अलंकारों से युक्त होकर देवहूति बाहर निकली. जैसे बाहर निकली तो वैसे एक विमान खड़ा है सामने. ऐसा दिव्य विमान देवहूति ने कभी नहीं देखा था. कर्दम ऋषि ने कहा कि चढ़ो विमान के ऊपर, अंदर चढ़ जाओ. देवहूति चढ़ गई और कर्दम ऋषि भी उस विमान में चढ़े. उसके बाद वह विमान इच्छा के अनुसार, कर्दम ऋषि संकल्प करते हैं इच्छा के अनुसार, वह विमान अपने आप गतिशील हो रहा है. कभी किसी लोक में, कभी किसी लोक में, कभी किसी लोक में, विदाउट वीजा अमेरिका चला गया विमान, यूरोप चला गया, लंदन चला गया, पता नहीं कहां कहां चला गया वो विमान. और उस विमान के अंदर सारा का सारा दिव्याति दिव्य एक चक्रवर्ती सम्राट के भोग के सामान वहां विद्यमान है. अनेक कमरे हैं, अनेक दास दासियां हैं, जो संकल्प करो वो उपस्थित हो रहा है. किसी चीज की, कोई चीज की कमी नहीं है. उस विमान में विचरण करते करते 100 वर्ष बीत गए. ये प्रातिभाषिक नहीं है, ये बताने जा रहे हैं. 100 वर्ष बीत गए और उस 100 वर्ष में 9 कन्याएं पैदा हो गई देवहूति के. घूमकर फिर आ गए. कर्दम ऋषि ने संकल्प किया, बढ़िया महल तैयार हो गया पृथ्वी लोक में, कोई चीज की कमी नहीं. उसके बाद कर्दम ऋषि ने कहा कि देवी अब तुम्हारी इच्छा हो गई, मां बन गई हो, अब हम जाते हैं तपस्या करने। बोले नहीं, अपने पहले प्रतिज्ञा में कहा था कि पुत्र होने के बाद मैं जाऊंगा, ये सब पुत्रियां हुई हैं, पुत्र नहीं हुआ है। एक दार्शनिक पक्ष है ये जितनी भी पुत्रियां हैं ये अनेक शक्तियां हैं, और ये शक्ति तभी सफल हो सकते हैं, फलीभूत हो सकते हैं, जब शिवस्वरूप पुत्र पैदा हो जाए। तो वृत्तियां और मन, जैसे एक मन होता है अनेक वृत्तियां होती हैं, मन के बिना वृत्तियों का कोई प्रयोजन नहीं, और वृत्ति के बिना मन अकेला शून्य में चला जाएगा। ये सब सांदर्भिक हैं, दार्शनिक प्रसंग हैं। इसी को प्रकृति और पुरुष, सांख्य ये अर्थ करता है। अनेक भेद वाली प्रकृति है और भेद रहित एक पुरुष है। पुरुष के प्रतीक ही कपिल भगवान हैं और प्रकृति के प्रतीक ही नव कन्याएं हैं। विद्वानों ने इस तरह व्याख्या की है। तो ये कन्या तो हो गए, लेकिन एक पुत्र की प्राप्ति चाहिए। आपने कहा है शब्द उच्चारण क्या कि बेटा होने के बाद मैं तपस्या करने जाऊंगा, पुत्र तो हुआ ही नहीं है, ये कन्याएं हैं, ये तो शादी होगा, ये लोग अपने अपने घर चले जाएंगे और तुम तपस्या करने चले जाओगे, मैं किसके आश्रय में रहूं? कहा भी है कन्या को जब तक शादी नहीं होती है तब तक मां बाप के आश्रय में रहना चाहिए, शादी हो जाने के बाद पति के आश्रय में रहना चाहिए, बच्चे हो जाने के बाद बेटे के आश्रय में रहना चाहिए। ये हमारी नीति वाक्य था, लेकिन आगे हम नहीं कहेंगे, आज के जमाने में वो कथनीय नहीं है। और आगे कहा है, न स्त्रीम स्वतंत्र मरहती, किसी भी अवस्था में स्त्री को स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए, पहले बाप मां के अधीन में रहना चाहिए, बाद में शादी के बाद पति के अधीन में रहना चाहिए, और बच्चे हो जाने के बाद फिर अपने बेटे के अधीन में रहना चाहिए, स्वतंत्र नहीं होनी चाहिए, ये हमारे नीति वाक्य था। तो ये तीसरे अंश को आज छोड़ देना आप लोग, नहीं तो फिर झगड़ा करने लग जाओगे। ये आत्मानंद गिरी भी स्त्री विरोध है, महिला विरोधी है लगता है, आप लोग कहने लग जाओगे, इसीलिए उसको छोड़ देना, नीति यही है। देवहूति इस बात को जानती थी, पहले मैं पिता के अधीन में थी, अब आपके अधीन में हूं, और कन्याएं शादी होकर चली जाएंगी, आप तपस्या करने चले जाओगे, मैं किसके आश्रय में रहूं? तो इसलिए एक बेटा तो होनी चाहिए। तो कपिल भगवान ने, मन कर्दम ऋषि ने कहा कि वो भी इच्छा तुम्हारी पूरी हो जाएगी। तब प्रार्थना की गई कि भगवान को आना था, उस निमित्त से भगवान जी आए, कपिल भगवान आए। तो कर्दम ऋषि ने तुरंत घर छोड़ दिया, कहा कि अब तुम इसके आश्रय में रहो, ये कोई साधारण बालक नहीं है, तुम्हें ज्ञान का उपदेश करके इस संसार भव सागर से निकालने वाला यही होगा, तुम चिंता नहीं करना। तो कर्दम ऋषि तपस्या में चले गए। बाद में कपिल भगवान ने जैसे माता देवहूति को जो उपदेश किया, पूरा सांख्य शास्त्र तो वहां खड़ा हो गया, सहेश्वर सांख्यवादी तृतीय स्कंद भागवत का भरा पड़ा है, कपिल गीता, जिस कपिल गीता के श्रवण के माध्यम से देवहूति का कल्याण हो गया, मुक्त हुई देवहूति। ये भागवत के प्रसंग में क्यों उठाया मैंने, क्योंकि महायोगी व जैसे एक समर्थ योगी बिना उपादान कारण के, बिना सहकारी कारण के योग संकल्प से जो कुछ निर्माण करते हैं, वह पूरा का पूरा केवल प्रातिभाषिक मात्र न होकर 100% शत प्रतिशत व्यावहारिक होता है। कर्दम ऋषि को घर बनाने के लिए किसी मिस्त्री की आवश्यकता नहीं पड़ी, कर्दम ऋषि को घर बनाने के लिए किसी सीमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ी, लकड़ी की आवश्यकता नहीं पड़ी, सुथार मिस्त्री की आवश्यकता नहीं पड़ी, कर्दम ऋषि को वह दिव्य घर बनाने के लिए ईंट की आवश्यकता नहीं, कील की आवश्यकता नहीं, हथौड़ी की आवश्यकता नहीं, रेती पत्थर पानी किसी चीज की आवश्यकता नहीं। अकेले थे, संकल्प मात्र से घर बना दिया। वो घर कोई इंद्रजाल का घर जैसा नहीं है कि केवल देखने के लिए हो जाए। देवहूति ने अपना जीवन उस घर में व्यतीत किया, इतना दिव्य व्यवहारिक घर था। इसके अलावा और भी बहुत से उदाहरण हैं। विश्वामित्र ने अपने चेले के लिए स्वतंत्र स्वर्ग का निर्माण कर दिया, जिसका नाम त्रिशंकु हुआ बाद में। विश्वामित्र की इतनी सेवा की कि तब प्रसन्न हो गया। विश्वामित्र प्रसन्न हुए और कहने लगे कि बेटा तू क्या चाहता है बोल। तो उसने कहा कि गुरुदेव, यूं तो स्वर्ग जाने के लिए बहुत बड़े यज्ञों का विधान है वेद में, ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, अश्वमेध यज्ञ के द्वारा, ज्योतिष्टोम यज्ञ के द्वारा स्वर्ग जाया जा सकता है। वेद में अनेक विधान है, विधि है, उपाय हैं, लेकिन इन यज्ञों के द्वारा जो कुछ भी स्वर्ग जाना चाहेगा, यज्ञ करने के बाद फिर मरने के बाद स्वर्ग प्राप्त होगा। तो मेरी तो इच्छा यह है कि मुझे कोई यज्ञ भी करना न पड़े और मरना भी न पड़े। बिना यज्ञ के, बिना मरे ही मैं सीधा स्वर्ग जा पाऊं। आप प्रसन्न हैं तो वो व्यवस्था मिला दीजिए। तो मिलाना ठीक था, मिला नहीं था तो बोले ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी बेटा, जाओ स्वर्ग, मेरी आज्ञा है, जाओ। गुरु की आज्ञा, विश्वामित्र की आज्ञा थी, तो वो तो चला गया स्वर्ग सशरीर। लेकिन जब देवराज को पता चला तो वहां रहने नहीं दिया, उसने घुसने ही नहीं दिया। मरे बिना तू यहां कैसे आ गया है? ना यज्ञ किया, यहां तो यज्ञ करना पड़ेगा, सौ अश्वमेध यज्ञ करना पड़ेगा, फिर मरना पड़ेगा, तभी आया जाता है। तो मरे बिना तू कैसे आ गया? घुसने नहीं दिया। आकर फिर रोने लगा, गुरुदेव वहां तो इंद्र ने मुझे घुसने नहीं दिया है, मेरी इच्छा है कि बिना मरे मैं स्वर्ग जाऊं। तो विश्वामित्र ने कहा कि चिंता न कर बेटा, उस स्वर्ग में तुझे इंद्र ने घुसने नहीं दिया तो मैं तेरे लिए अलग स्वर्ग बना देता हूं। बस संकल्प किया, अलग स्वर्ग बना दिया और जा। वो चला गया स्वर्ग में, बैठा उस नया निर्मित, विश्वामित्र के द्वारा निर्मित स्वर्ग। ये कोई साधन सामग्री से निर्माण किया हुआ स्वर्ग नहीं था, और वास्तव में देव निर्मित या ईश्वर निर्मित जो स्वर्ग है, जहां इंद्र राजा बनकर बैठा है, उससे किसी चीज में कमी नहीं था। विश्वामित्र निर्मित स्वर्ग में कोई चीज की कमी नहीं, बड़ा आनंद का अनुभव कर रहा था। और किसी ने जाकर देवराज इंद्र को कह दिया कि अरे क्या है, तू सत्ता शासन करता है, तेरे बराबर में दूसरा स्वर्ग निर्माण कर दिया विश्वामित्र ने और इंद्र बनकर बैठ गया दूसरा, और हम देवता तेरे कहना का मानेंगे, उसके कहना माने, क्योंकि स्वर्ग में जो सिंहासन है उसमें जो बैठेगा उसका मानना पड़े। यहां एक स्वर्ग की जगह दो स्वर्ग हो गए, एक इंद्र की जगह दो इंद्र हो गए, तो अब हम तेरे कहना मानेंगे, उनका कहना माने, कौन सही है? तो देवराज जो इंद्र था उसने कहा कि ये सही है, हमारा कहना मानो। उसने कहा कि तुम हमारा कहना, ये सही है ये। तो बड़ा असमंजस हो गया। तो इस दुविधा को हटाने के लिए इंद्र ने विश्वामित्र निर्मित उस स्वर्ग में आक्रमण किया, पूरे दल बल के सहित आक्रमण किया और उस स्वर्ग को अपने कब्जे में लिया और विश्वामित्र के उस चेले को वहां से फेंक दिया नीचे। अब वो व्यक्ति नीचे आते हुए कहने लगा जोर जोर से विश्वामित्र, गुरुदेव कि आपने जो नया स्वर्ग बनाकर दिया था, यहां से तो मुझे धकेल दिया गया, लखेट दिया गया, भगा दिया गया, ये इंद्र ने आक्रमण कर लिया, मुझे नीचे गिरा दिया, मैं क्या करूं। विश्वामित्र ने कहा कि बेटा तू वहीं रहो, मत आना नीचे, मेरी बेइज्जती होगी। गुरु को भी अपनी इज्जत की बहुत ख्याल रखनी पड़ती है, चेला बनाना बहुत आसान होता है, चेला बनाना तो बहुत आसान है, पुत्रेषण शिष्येषणा है ना। आप लोगों में पुत्रेषणा का एक दोष है, वही आपको परेशान करता है, और कभी कभी हम लोगों में ये शिष्येषणा का एक विकार इतना परेशान करता है। ऐषणा जिसको भी छुएगा वो परेशान तो करेगा ही, यदि कोई सन्यासी कोई महात्मा शिष्येषणा लेकर बैठा हुआ है तो वो कोई सुखी तो नहीं हो पाएगा। ऐषणा ही दुख का कारण है, वेदांत का रहस्य है। और इधर विश्वामित्र ने कहा कि बेटा तुम नीचे नहीं आना, नहीं तो यहां तो मेरी बदनामी हो जाएगी। और उधर स्वर्ग में इंद्र प्रवेश करने नहीं देता और इधर मर्तलोक में विश्वामित्र प्रवेश करने नहीं देते, नहीं तो वशिष्ठ के सामने नाक कट जाएगी विश्वामित्र की। है देखो मैं राजा क्षत्रिय होकर भी तपस्या करके मैं संकल्प से ब्रह्म ऋषि हो गया, ब्रह्म ऋषि होने के कारण मैंने स्वतंत्र स्वर्ग निर्माण कर दिया, मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो कहते हैं आज तक वो त्रिशंकु, उसका नाम तब जाकर त्रिशंकु हुआ, वो त्रिशंकु। और शायद ये त्रिशंकु हरिश्चंद्र का ही बेटा था, शायद उन्हीं से संबंधित है, उन्हीं के वंशज है ये। तो इसका मतलब मैं कहना क्या चाह रहा था कि महायोगी कोई सिद्ध योगी अपने योग साधना से योग सिद्धि से बिना उपादान कारण बिना सहकारी कारण के कार्य को उत्पन्न कर देता है और वो पूरा का पूरा व्यावहारिक होता है। व्यावहारिक क्या, पारमार्थिक भी हो जाता है। स्वर्ग बन गया कि नहीं पारमार्थिक, यदि वो प्रातिभाषिक मात्र होता तो इंद्र को क्या परेशानी होती, इंद्र को कोई परेशानी ना होता, व्यावहारिक हो गया पारमार्थिक हो गया, इसीलिए इंद्र को वो स्वर्ग को भी कब्जा करना पड़ा। अब एक साधारण योग साधना से उस परमात्मा की उस ईश्वर की थोड़ी सी शक्ति का संचार हो गया, इतनी मात्र से वो क्षमता आती है तो उस परमात्मा में फिर सृष्टि करने की क्षमता नहीं है, ये कल्पना तुम कैसे कर रहे हो। इच्छा ज्ञान क्रिया पूर्वा यस्मात् सर्वा प्रवृत्तया सर्वेपि जंतवस्तस्मात् ईश्वरा इति निश्चिताः। हम तो यहां तक कहेंगे कि जितने भी जंतु जीव हैं इन सभी में इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति तीनों शक्ति दिख रही है, इसका मतलब ये तीनों शक्ति ईश्वर से ही आया हुआ है और उसी के शक्ति को प्राप्त करके जीवात्मा भी अपने क्षमता अनुसार कर्म करता है। इतना ही अलग है कि इसमें जो शक्ति है तीन शक्ति वह तमोगुण के द्वारा अभिभूत हुआ हुआ होने के कारण ये शक्ति अपने फूल फॉर्म में नहीं है, अल्प में रह गया। यही साधना में लग जाए और योग साधना करेगा तो यही शक्ति उस ईश्वरीय शक्ति के साथ एक होकर यह पूरा का पूरा ईश्वर के रूप में परिणत होता है। किसी ने पूछा बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज का जो दृष्टांत दिया था उस दृष्टांत में व्याप्ति दोष जो था उसको निवारण करने के लिए योगी का दृष्टांत दिया। विश्वामित्रादय पूर्वे परिपक्व समादया उपादानो उपकरण प्रयोजन विवर्जिता स्वच्छया स्वसृजु स्वर्गम सर्वभोग उपबृंहिता। समस्त सुभोग से युक्त हुआ हुआ स्वर्ग का निर्माण उन्होंने किया। इसी तरह ईश्वर ने अपनी इच्छा शक्ति से सारे भोगों से युक्त हुआ हुआ यह विश्व ईश्वर ने निर्माण किया है। ये व्यावहारिक है। ईश्वरो अनंत शक्ति स्वतंत्रो अन्यान अपेक्षत स्वेच्छा मात्रेण सकलम सृजत्यवति हन्ति च। ईश्वर अपनी शक्ति मात्र से बिना किन्हीं साधनों से वह उत्पन्न करता है, पालन करता है और अंत में संहार करता है। न कारकाणां व्यापारात् कर्ता स्याद् नित्य ईश्वरः नापि प्रमाण व्यापारात् ज्ञाता सोऽसौ प्रकाशक। सर्वशक्तिमान ईश्वर को कार्य करने के लिए, किसी को उत्पन्न करने के लिए कारकों की, साधनों की अपेक्षा रखे बिना वह सर्वकर्ता बनता है और करणों की अपेक्षा रखे बिना और प्रमाण की अपेक्षा भी रखे बिना वह सर्वज्ञ भी होता है। हमको अल्प जानने के लिए भी करणों की आवश्यकता पड़ती है, ईश्वर को सर्वज्ञ होने के लिए करणों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमको एक फूल देखने के लिए भी आंख की आवश्यकता पड़ती है, हमको एक लिखे हुए अक्षर को पढ़ने के लिए भी आंख की आवश्यकता पड़ती है, यही साधन करण। फिर भी हम अल्पज्ञ के अल्पज्ञ ही रह जाते साधन के होते हुए भी, और उसके पास न इंद्रियां हैं न करण है। इसलिए तो तुलसीदास जी ने कहा बिनु पद चले सुने बिनु काना। हमको घर जाने के लिए पांव की आवश्यकता पड़ती है, उसको पांव की आवश्यकता नहीं पड़ती घर जाने के लिए। कहीं जाना कहीं आना हो, करणों की आवश्यकता बिना भी वह सब जगह पहुंचता है, करणों के बिना भी वह सबको जानता है, करणों के बिना भी वह सब कुछ कर सकता है, इसीलिए तो उसको ईश्वर कहा गया है। नापि प्रमाण व्यापारान ज्ञाता सोऽसौ प्रकाशक। ज्ञातृत्वम अपि कर्तृत्वम स्वातंत्र्य तस्य केवलम या चेच्छा शक्ति वैचित्री सास्या स्वच्छंदकारिता। यया कर्तुम न वा कर्तुम अन्यता कर्तुम अर्हति स्वतंत्राम ईश्वरेच्छाम के परिच्छित्तम इहे सती। उस ईश्वर की शक्ति को दुनिया में और कोई किसी में वो क्षमता नहीं कि उसके शक्ति को सीमित करे। आज विज्ञान तो लगता है कि कर रहे हैं कि उसके शक्ति को सीमित कर ले, में उसमें लगे हुए हैं। हमने कल भी संकेत किया है कि विज्ञान को चुनौती है कि उस परमात्मा की अनंत शक्ति को विज्ञान किसी भी हालत में सीमित नहीं कर सकता है, क्योंकि विज्ञान जो सीमित करने जाएगा वो करने की शक्ति भी तो परमात्मा की ही है। श्रुतिश्च सो कामेति चया सृष्टिमीषितु तस्मात् आत्मना आकाशात् सम्भूत इति च ब्रवीत। श्रुति ने भी यही कहा है, श्रुति प्रमाण है कि ईश्वर ने अपने इच्छा से सबसे पहले आकाश बनाया, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से अन्न रस औषधि, अन्न रसों से ये सारे के सारे जीव पुरुष बनाया हुआ है। तो इसके लिए और कोई साधन की आवश्यकता नहीं है, संकल्प किया सारा सृष्टि उत्पन्न हो गया। ये श्रुति छांदोग्य श्रुति भी यही बात प्रमाणित करती है, इसमें शंका करने की आवश्यकता नहीं है। निमित्ते चेत भवेद अस्य जगत परमेश्वर विकारित्वं विनाशित्वं भवेद अस्य कुलालवत्। यदि उस परमेश्वर को भी निमित्त कारण, उपादान कारण, सहकारी कारण, सब साधन सामग्री के द्वारा तब उसके बाद वह कर्ता बनता है मानेंगे, तो वह भी कुम्हार की तरह वह भी विकारी हो जाएगा, परतंत्र हो जाएगा, तो वह फिर सर्वशक्तिमत्ता उसकी खंडित हो जाएगी। बुद्ध्यादयो नवगुणा नित्या एवेश्वरस्य चेत नित्यच्यावान जगत श्रेष्ठो प्रवर्तते व सर्वदा प्रवृत्त्युपरामा भावात् संसारो नैव नश्यति मोक्षोपदेशो व्यर्थ स्यात् आगमोऽपि निरर्थकः। यदि सारे प्रवृत्ति निवृत्ति आदि सब कुछ उसी में नित्य हैं, तो फिर ईश्वर हमेशा प्रवृत्ति करता ही रहेगा। नित्य प्रवृत्ति करने की क्षमता वाला होने के कारण या तो वह नित्य प्रवृत्ति करता रहेगा, नित्य निवृत्ति वाला मानते तो फिर वो कभी भी प्रवृत्ति नहीं करेगा, फिर जगत स्वयं या तो फिर कभी भी उच्छिन्न नहीं होगा या जगत कभी भी अस्तित्व में नहीं आएगा। ये पूर्व पक्ष का ये प्रश्न यदि है तो उसको खंडन करते हुए शंकराचार्य जी कहते हैं, तस्मात् माया विलासोऽयम् जगत कर्तृत्वमीशितो बंध मोक्षोपदेशादि बेवरा व्यवहारोपी मायया। माया दो प्रकार की सत्ता वाले वस्तुओं को उत्पन्न करती है, एक व्यावहारिक दृष्टि से व्यावहारिक सत्ता वाला, पारमार्थिक दृष्टि से प्रातिभाषिक सत्ता वाला। जगत को उत्पन्न करने के कारण यह नित्य जगत की सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि पारमार्थिक दृष्टि से जगत अनित्य है, पारमार्थिक दृष्टि से ईश्वर में जगत सृष्टित्व भी वह अनित्य है। और आगे क्या कहेंगे कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।